संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान वर्धमान महान जिन चरण हमारे। समय सार पेज नंबर 351, कलश नंबर 155। ये सात भयों की चर्चा करते हुए अमृतचंद्राचार्य ने 6 श्लोक लिखे हैं। उनमें ये सबसे पहला छंद है जिसमें इसलोक भय और परलोक भय की चर्चा की गई है। ये सात भयों का संक्षेप स्वरूप पहले अपने ख्याल में आ जाए तो फिर यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है वो समझने में अपन को बहुत सुविधा रहेगी। ये पेज नंबर है ना आपके पास किताब, 290 नंबर पर पेज पे निकालो। बनारसी दास का छंद है, इसमें सात नयों शब्द भयों का नाम है और उनकी साधारण परिभाषा भी है, वो अपने एक बार पढ़ लेते हैं। भव भय परलोक भय मरण वेदना जात, दशदा परिग्रह वियोग चिंता,
हमारो को नाही अने रक्षा भय, चोरे भय विचारे अने गुप्त मन मानी, अने चिंतो अब ही अचानक कहा दो होई, ऐसो भय अकस्मात जगत में जानिए।
ये तो सात नाम है के ई भव परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अनरक्षा भय, अगुप्ति भय और अकस्मात भय। ये सात भयों के नाम हैं और ये परिभाषाएं हैं कि दशधा परिग्रह वियोग चिंता। इस भव में मैंने 10 प्रकार के जो परिग्रह जोड़े हैं, जो मैं 24 की बात नहीं करते, जो वही परिग्रह संयोग रूप है ना, और वे अंतरंग 14 परिग्रह तो संयोगी भाव रूप हैं। तो ये जो मैंने जोड़े हैं 10 प्रकार के परिग्रह, धन धान्य आदि है ना, समझ लो जो हमारी संपत्ति है सब, जैसे हम मानते हैं सब, इसका वियोग ना हो जाए, इसका नाम है इसलोक भव। यह लोक इसलोक इलोक भव, इसलोक भव, इस भव में अब मेरी जो इज्जत है, अभी तक मैंने जो परिग्रह जोड़ा है, अब बहुत 24 घंटा खतरा रहता है, बाद कोई चोर डाकू चक्के भी ना ले जाए, और फिर गवर्नमेंट के सेल टैक्स इनकम टैक्स वाले ये ना ले जाए, फिर भाई बंद ना ले जाए, फिर ये संस्था वाले बहुत बहुत भय चारों तरफ से चेंट जाते हैं सबके सब, क्यों? तो निरंतर ये मेरे 10 प्रकार के परिग्रहों का वियोग ना हो जाए, इस भय का नाम है यही लोक भय। और अब परलोक में दुर्गति गमन न हो जाए, अब इसके रहने से गारंटी से दुर्गति होनी है। कल बताई थी ना बहु धंधी बहु दुखी, और वो बहुवार में परिग्रह से नारकस आयुषा, ये सब बताया था कल विस्तार से। अब वो इस परिग्रह इस भव में बढ़िया से बढ़िया बने रहे, सारे पाप परिग्रह पाप है ना, और उसका उपभोग भी बना रहे, ये बिखर ना जाए ये भय, और परभव में नरकादि गति में न चला जाऊं, इस बज्जर से कभी थोड़ा थोड़ा, जिसको दंत मात्र नहीं छोड़ना चाहता है, क्यों उसको थोड़ा थोड़ा छोड़ता भी है। मैंने अमेरिका में सुना, सीतामर भाई थे एक पंडित, व्याख्यान में बोलते थे, देखो ऐसा बैंक जिसमें आपका पैसा कहीं भी खतरे में नहीं है, और जब चाहो आप मिल जाए, ऐसा बीमा कि जब आपके पहले ही 30 वर्ष के हो बुढ़ापे में मिल जाए, आपके मरने के बाद बच्चों को मिल जाए, ये तो सब है इंतजाम, लेकिन आप अपने पैसे को जमा कराओ और परलोक में मिल जाए, ऐसा बैंक मेरे पास है छाती टोके के लिए। क्या अगर हमें दान दे दो तो परलोक में तुम्हें मिल जाएगा, तो ये पंडित जी नहीं मिला तो मैं जिम्मेवार, आगे ले लेना मेरे से क्या है? लोग बहुत खुश होते थे, हाँ ऐसा बैंक है, ऐसा बैंक है, कितना बढ़िया तर्क दिया। देखो थोड़ा बहुत छूटता है तो परलोक भय की वजह से छूटता है, और इसमें इतनी धार्मिक संस्थान चल रहे हैं, ये नहीं होते तो ये नहीं चलते। ये लोग भय माने ये परिग्रह है, ये बिखर ना जाए, इसका नाम ये लोग भय, बनारस दास जी लिख रहे हैं ना, और दुर्गति गमन भय परलोक भय मानिए, दुर्गति में गमन ना हो जाए उसको परलोक भय समझना, और प्राणनी को हरण मरण भय, ये 10 प्राण का कोई हरण ना कर ले इसका नाम मरण भय है ना, और रोगादि कष्ट या वेदना भय बखानिए, बीमारी ना हो जाए, तकलीफ ना हो जाए, कैंसर में तो बहुत तकलीफ होती है, तो छोड़ देना तमाकू वमाकू खाना, ये गुटका फुटका वो तो ठीक है, आपका कहना ठीक है, ऐसे सैकड़ों लोग हैं साहब जिंदगी भर तमाकू खाई और उन्हें नहीं हुआ, और ऐसे भी लोग हैं कि जिन्हें सूंघी तक नहीं तमाकू और उन्हें गले का कैंसर हो, कैसे कैसे उदाहरण इकट्ठे करके लाता है, खोज खोज के ये भोग कोई छोड़ना नहीं पड़े और कैंसर हो न जाए, घी छोड़ना न पड़े और हार्ट अटैक हो न जाए, और सारी जिंदगी भी खाया है। गुरुदेव सुनाते थे कि एक भाई का बेटा मर गया तो वो रोजाना पूरी खाता था, हलवा खाता था, रोटी कभी जिंदगी में उसने खाई नहीं थी, गुरुदेव सुनाते थे, आप लोगों ने सुना होगा उनके मुख से। और जब वो बेटा मर गया जवान, तो उस दिन घर में फिर वो नहीं बनी पूरी हलवा, रोटी उसकी थाली में रख दी तो टप टप आंख से आंसू गिरे, किस बात के, बेटे के बेयोग के नहीं, आज मुझे रूखी रोटी खानी पड़े। तो गुरुदेव सुनाते थे, और मैंने भी देखे हैं, हमारे कई गांवों के नाम मुझे अभी जवान पे आ रहे हैं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता हूं, हमारे बुंदेलखंड में रिश्तेदारों में कि उनने कभी जिंदगी में रोटी खाई नहीं, पूरी खाते 80-85 वर्ष में पूरी का नाश्ता करते हैं, इतनी उम्र हो गए लेकिन मैं 2 पूरी और दूध दही उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं, उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं, तो गाय का घी तो बहुत अच्छा होता है, हमारे यहां तो शुद्ध होता है, समझ गया ना, रोग आदि घर खानी, और रक्षक हमारो को नाही अन रक्षा भय, कोई हमारा कोई रक्षक तो है नहीं, कोई आ जाए, कोई भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, ये कर दे वो कर दे, 24 घंटे निरंतर भय रहता क्या नहीं रहता है। ऐसा उदाहरण आता है एक शास्त्रों में कि एक महाराज से साधु महाराज अजैनियों के, उनका एक चेला था, तो वो रात भर कहते थे पोंगा दास जागते रहना, बहुत डर है, कुटिया में रहते थे, एक लंगोटी पहनते थे, चदरा ओढ़ते थे, कुछ था नहीं, भीख मांग के खाते थे, मैं भीख मांग के अच्छा नहीं लगता, तो और कोई शब्द आप समझ लेना, अब वो चेला कहे कि गुरु जी वो काहे का डर है, ये लुटने को यहां है क्या, चोरों का बहुत डर है, चोरों का बहुत डर है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो गुरु जी कहीं लेते में गए होंगे, और उसने फटाफट गुरु की कुटिया में उनके बिस्तर के नीचे खुदाई करी, और उन्हें बहुत सोने चांदी की मुहरें मिली, लेके उसने उठा के जल्दी उसे पूर दिया, और बाद में कोई एक कुआ था बहुत दूर, तो वहां दादाया एक आया उन्हें सब। और फिर रात को गुरु जी ने कहा पूंगा दास जागते रहना, बहुत डर है कि गुरु जी आराम से सो, डर बिल्कुल नहीं है। क्या कह रहा है क्या कह रहा है? फिर बोला जागते रहना कि कोई डर नहीं है। कि क्यों नहीं है डर? कि मैं डर को बांध के इस कुएं में फेंका। क्या किया रे तुमने? क्या किया कि तुम्हारा यहां तारा है बिस्तर के नीचे जो माल मत्ता वो सब मैंने देखा है, अब कोई डर नहीं है। समझिए डर काय का है बोलो, इसी का तो डर है ना। अनरक्षा काय की है, अरक्षा काय की है। तो एक बात मैं कभी कभी कहता हूं, बहुत मार्मिक है, आप लोग विचार करना। अपना पेन खो जाता है, रूमाल खो जाता है, कभी टोपी खो जाता है, कभी कुर्ते ही खो जाता है, कभी कुर्ते के बटन खो जाते हैं। लोग समझते हैं कि हीरे के होंगे, होते तो नकली हैं, अपने पास क्या है, समझे ना। तो अपन कितना दुख होता है, बोले से कर देंगे क्या कीमत है। ये 10-20-25 रुपए की चीज है, एक रूमाल खो जाए उसकी ऐसी खोज होती है जैसी आत्मा की वही होती है, तो भी असम दर्शन हो जाता। अरे भाई जितने दिन अपने पास रहना था रह गया, गया दूसरे रूमाल आता है क्या है, एक 2 रुपए का पेन खो जाता है, सचमुच कितना दुख होता है। मैं ये बताना चाहता हूं सबको कि ये दुख इतना हुआ, इस दुख को एक इकाई बना के रखो, समझना। अब अपना पास जितना भी परिग्रह है वो जो खोया है उससे वो कितना गुना है वो गणित लगाओ। जो अभी नहीं खोया है अपने पास है वो कितना है, मान लो 1,000 रुपये खोया है और आपके पास 10 करोड़ रुपया है जो नहीं खोए हैं पद्मचंद जी, तो अब इतना ये खोया है तो ये जितना दुख हुआ है यदि वो सब खोएगा 10 करोड़ की संपत्ति तो कितना गुणा दुख होगा। अब अपना अपना हिसाब लगा लो, जिसके पास जितना हो और उतने में कितना दुख हुआ और उससे सब खोएगा तो कितना दुख होगा, अपना अपना गणित लगा लेना। क्योंकि मुझे किसी का पता नहीं है कि किसके पास कितना है। तो मृत्यु का नाम, सब एक साथ खोने का नाम मृत्यु है। अब समझ में आई कि नहीं आई? वो मरने का जो दुख है वो मरने का नहीं है उत्तम सिंह जी, ये सब चीजें एक साथ खोने का नाम, उसका नाम क्या है? तू है। लोग हमें इतने पेन भेंट दे देते हैं, इतने पेन भेंट देते हैं, घड़ियां पेन और कितनी नहीं, लोग तो बहुत बुरा मानते हैं। अब हमारे पास रोजाना 2-4 पेन खोते हैं, जेब में लगाओ वो दूसरे दिन नहीं मिलता, तो वहां रखते हैं बाहर फोन के पास, 2 दिन में गायब हो जाता है। तो मैं कहता हूं पत्नी से, काहे का डर, जितने खोते हैं उतने आते हैं, तुमने खरीदा है कभी 5 रुपये देकर के? काहे को रोती हो, ये तो सब जाना ही है, नहीं खोएंगे तो घर में पड़े रहेंगे। और ये तुम्हारे पेन कोई लेने वाला नहीं है, ये बच्चे भी फेंक देंगे, ये तुम्हारे कुर्ते कपड़े मपड़े इनको कोई पसंद नहीं है, इन्हें तो कोई होगा, इनके मतलब का माल तो लेंगे नहीं, तो ये सब ऐसे ही जाने वाला है। क्यों? अब ज्यादा दिन नहीं है, काय का खोने का डर, काय का दुख। सब विचार करें इस तरह से कि ये परिग्रह वास्तव में ये अपना इस सोकाल लेके आया है, इसमें कर्मोदय का निमित्त है, वो अनुकूल हो प्रतिकूल हो ख्याल में आया ना। अब ये तुम्हें जो दुख हुआ ना खोने का, तो ये असाधावेदनी कर्म के उदय से मिला होगा, तुम्हें दुख दे गया, सुख तो कुछ दे नहीं गया, क्या क्या दे गया है? दुख दे गया ना, ये सब जाने वाला है भाई साहब, ये ठाट बाट इज्जत बज्जत जो भी आपने खर्ची करी है सब कल्पना लोक में जो खड़े हुए हो, वो मृत्यु माने बस आंखें बंद गई सब सुना। क्यों? अब समझ लो, यदि तुम्हें मृत्यु भय कम करना है तो क्या करना चाहिए सुरेश जी? कि ये जो चीजें तुम्हारी खोती हैं उसमें यदि तुम्हें दुख जीरो हो तो मृत्यु का भय तुम्हें बिल्कुल नहीं रहेगा। और जितना कम कर सको करो, एक सेकंड विकल्प नहीं आना चाहिए मेरा कहना तो ये, पर खत्म हो गया ना, चप्पल गई गई कैसे गई गई नंगे पैर रहेंगे, अब इस बम में इतना पुण्य तो है कि आ जाएंगे एकदम फटाफट दूसरी बन के तैयार होकर के, क्यों नहीं मिलती है क्या, आते नंगे पैर रहना पड़ा तो अभी आज सबका, कोई मैं अपनी बात नहीं कहता हूं, मैं सबका पूछता हूं क्यों ऐसा है ना, फिर काय का विकल्प, फिर काय की खोज, इधर तुम्हारी खोज की शक्ति है इधर लगाओ तो वह कुछ काम आएगी। प्राणनी को हरण मरण भय का अर्थ बता रहा था मैं, रोगाधिक कष्ट भय वेदना बखानी है रक्षक हमारो को नाई अनरक्षा भय, काय का रक्षक चाहिए तेरे को, जंगल में मुनिराज बैठे हैं आत्मा का ध्यान कर रहे हैं और वहां शेर घूम रहा सब में कोई भय नहीं है क्यों, और तेरे को इतना इतनी सुरक्षा व्यवस्था अंदर से तीन दफे ताला लगाया चटकनी लगी कि नहीं लगी ऐसे देखता है अरे जी एक दिन चटकनी न लग पाए तो मैं तो पहले सो गई थी तुम बाद में सोए तुम्हारे भरोसे कुछ नहीं, अरे क्या हो गया क्या चला गया तुम्हारा चला जा सकता था, अरे भाई अब नहीं लगी तो नहीं लगी क्यों क्या है सोचो विचार करो, चोर भय विचार अनगुप्त भय मानिए, मेरी चीज मैंने बहुत सुरक्षित रखी है अब चोर ना ले जाए, चोर मैंने उसकी गुप्त नहीं रही बात प्रकट हो गई, अन्य चोर भय कह दिया लेकिन कोई चीज हमारी प्रकट ना हो जाए इसका नाम है अगुप्त भय, केवल ज्ञानी को क्या सब प्रकट है, अंधा देखे जगत मुझे बोस मंत्र है ये कोई नहीं देख रहा, जहां वो ऐसा मुंह करके बैठता है और वो समझता मैं दीपाल की तरफ मुंह है उल्टी तरफ, अनचिंतो अब ही अचानक कहाधो होई, ये बहुत मार्मिक है, अब सब कुछ नहीं है ये सब ठीक ठाक हो गया, अब कोई अचानक आपत्ति ना आ पड़े, अचानक नहीं आ पड़े, ये अचानक नाम के भय के नाम पर करोड़ों का बीमा का व्यवसाय चलता है, क्यों हम हर साल विदेश जाते हैं 10-15 हजार रुपए बीमा के खर्च होते हैं और एक पैसे का कम बीमा वहां होता नहीं, कुछ होता नहीं है, वो कहते हैं बेकार गए पैसा क्यों, कुछ हो जाता तो कुछ मिल जाता उसने टांग टूट जाती तो 2 लाख मिल जाते क्या है? और हाथ कट जाता तो 1 लाख मिल जाता, सामान खो जाता तो $500 मिल जाते, तो कुछ तो हुआ नहीं, तो ये जितने ये बीमा हो रहे हैं क्यों करते ना सब बीमा नाम का व्यवसाय जो है वो सब काय के भय से अकस्मात है, अभी कोई संभावना नहीं है, कोई बुढ़ापे में भयंकर बीमारी नहीं आ जाए, इलाज के लिए सारी जिंदगी भर रहे हैं क्यों, और आ जाएगा कहीं ऑपरेशन कराना पड़ेगा तो 2 लाख 10 लाख लगेंगे, कहां से लाएंगे और 10 लाख की जगह 20 लाख चले गए और कुछ तो हुआ ही नहीं क्यों कहते अकस्मात अनचिंतो अब ही अचानक कहां धो होई, जिसको हम सोच नहीं सकते साहब ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं उसको अचानक अकस्मात भय बोलते हैं, ज्ञानी जीव के ये सातों भय नहीं होते, अब वो लगाना सब श्रद्धा के लेवल की बात, अब एक एक गाथा में एक एक भय की चर्चा चलेगी, अभी जो अपन ने कलश पढ़ा उसमें इस लोक भय ही लोक भय और परलोक भय की बात है, अब वो देखो क्या जवाब है, अपन क्या समझते हैं कि इस लोक माने मेरा परिग्रह सुरक्षित रहे और परलोक माने मेरी दुर्गति भी ना हो, तो इन दो की गारंटी हो जाए क्यों कि परिग्रह भी कहीं जाएगा नहीं तुम चिंता मत करो और मैं स्वर्ग में भी मिलेगा, तो हमारे दो भय से हम बच सकते हैं, ये हमको उपाय ये लगता है और इसलिए हम सुरक्षा के भी बहुत बहुत उपाय करते हैं, आप जानते हैं ना सब हमने भी बहुत किए हैं, चार चार चौकीदार रखे हैं, ये रखे हैं, फिर वो क्या लगाया है। अभी हम यहाँ बैठ रहे हैं ना, तो हमारी फिल्म बन रही है, कि तुम बना रहे वो नहीं, एक और बन रही है। इधर तुम आकर के हमसे धुआं झपकी करोगे तो वो आ जाएगी उसमें। सब जगह जहां तुम कोई गड़बड़ करोगे सब जगह लग रही है। मैंने कहा क्या जरूरत है भैया इसकी, दादा आप नहीं समझते, अभी सब समझदार हो गए, हम ना समझ हो गए, तो इसमें मत बोलो आप, हमारे काम में मत बोलो, जो हमें करना है करने दो। क्यों अल्लाह, अरे देर लाख में कितना सारे तिघर घर जा सकता है, नहीं दान तो हम इसमें नहीं सुनेंगे दादा तुम्हारी, नहीं सुनोगे। तुम घूमने बाहर नहीं जाया करे, ये क्या करें, तुम्हारी कैद में रहे हम, नहीं देने वाले हैं हम। जो सुनो क्या कहते हैं, इस लोक का भय परलोक का, ये इंतजाम हम करते हैं। बहुत बहुत सेठ लोग आप हमसे कहते हैं, आपको तो जितना काम करना हो करो, जितने विद्यार्थी पढ़ाना हो बढ़ाना हो पढ़ाओ, हम बैठे हैं ना, छाती ठोक के कहते हैं, आप कोई घबराओ मत, घबराओ मत, कौन घबरा रहा है, हमें क्या है, दो कम पढ़ेंगे चार कम पढ़ेंगे चार ज्यादा पढ़ेंगे, हमें क्या फर्क, हमारा क्या फर्क पड़ता है, विकल्प है क्या, अधिक से अधिक है नरेश भाई कर रहे हैं। वो कहते कोई भी भय नहीं आ जाए तो वो इंतजाम करता है। अब आचार्य क्या कहते हैं, ये लोग भय पहले लोग भय से छूटने का उपाय क्या है, वो कहते हैं ये लोग भय में दस प्रकार का परिग्रह और परलोक भय में नरक में ना चले जाएं। हमें ये दोनों हम हैं ही नहीं, हम में आज भगवान आत्मा में ये दोनों हैं ही नहीं, क्या लिखा ना, ये लोक और परलोक से मेरा ना कुछ संबंध है, इनका जो होना हो सो हो ना, जिसे जहां जाना हो जावे ना, ये परिग्रह मेरे से रहे। हमारे पदम चंद जी हमें समझी साहब है ना, उनने कहा था किन्ने शशि भाई ने, ये टूर्नामेंट स्मारक हमारा है, हम छीन के हम घुस जाएंगे, तुम्हें निकाल बाहर करेंगे, तुम क्या करोगे, गुरुदेव का है ना, फिर क्या करोगे तुम, उनका हम ये हम लोग प्रवचन करना है तो जहां जगह मिलेगी वहां करें, सड़क पर बैठ के करेंगे, क्यों, और फिर तुम यहां बीड़ी का गोदाम बना देना, क्या करें, ये जवाब दिया था मैंने, यहां ऐसा हुआ था जब मैं यहां आया सबसे पहले, घटना बताता हूं, तो गोदगा जी के एक दोस्त थे, बैठे हमारे बाबू चाचा यहीं बैठे हैं हमारे अध्यक्ष, तो उनके यहां सिलाई की का काम होता था, मशीनें चलती थी, तो उनने कहा कि यहां सुने रख दो और विधवाओं सबसे कहो गए मशीनों की ट्रेनिंग दो चलाए और जो वो सीख जाए तो एक मशीन उन्हें दे दो, और ऐसे सब विधवाओं को लेना, कोई ने कुछ बताया कोई ने कुछ बताया बहुत बताया। देखिए गोदगा जी इन बातों में जाने दो, मैं इस हॉल को मुमुक्षुओं से भर के बताऊंगा, तत्व ज्ञान कर्ता से भर के बताऊंगा, आप धैर्य तो रखो, थोड़ा समय तो दो, जिस काम के लिए आपने बनाया है, क्यों विदय जी बाबू गुरुदेव सोनगढ़ में कितने वर्ष रहे, कितने रहे, 45 है, मुझे भी इसमें रहते हुए 45 वर्ष हो गए, दशहरे के दिन उत्तम चंद जी 45 हो जाएंगे, पर्यूषण में आया था उसके पहले तब भी मैंने इसमें प्रवचन किए थे, तो ये आएगा ना दस लक्षण परम, उस दिन मेरे 45 वर्ष हो जाएंगे पूरे पक्के, अब जितना जिंदा रहूंगा वे उतना ज्यादा होंगे। क्या कह रहे हमें गुरुदेव से आगे, अरे गुरुदेव से आगे कौन निकलेगा, और तो गुरुदेव तो ये चाहते हैं, गुरुदेव के मुंह से ये नहीं सुना कि मेरा कोई शिष्य मेरे पहले मोक्ष चला जाए तो मुझे बहुत खुशी है। निहाल जी के बारे में कहा था कि नहीं कहा था, हमारे कितने क्षुद्र दिमाग हो गए हैं, जब लोग वहां ऐसा कहते थे कि हम सब पूज गुरुदेव श्री के साथ मोक्ष जाएंगे, तो मैंने गुरुदेव की उपस्थिति में कहा था हमें ये बात मंजूर नहीं है। क्यों क्यों नहीं है मंजूर? इसलिए कि वे तो तीर्थंकर होने वाले हैं, वे स्वर्ग में जाएंगे, तुम्हारे रहेंगे, संसार में रहना स्वीकार नहीं है। क्यों? और जिसको सागरों पर्यंत संसार में रहना स्वीकार हो वो आत्मार्थी नहीं हो सकता। क्यों? बोले कैसे कैसे करेगा? अब मैंने तो बारह भावना में लिखा है, पढ़ भैया क्या है, वो साथ की भावना संसार का कारण है और एकत्व की भावना मुक्ति का कारण है। पंक्ति याद है किसी को? मनुष्य ने लिखा साथ की भावना ये संसार का कारण है और अकेलेपन की भावना ये मुक्ति का कारण है। ले दौलत प्राण प्रिया को तू मुक्ति ना जाना पाएगा, यदि एकाल की चल पढ़ा नहीं तो यहीं खड़ा रह जाएगा। आप गदब तो देखो, इसे मोक्ष में भी टोले के साथ जाना है, पूरा टोला के साथ जाना है। ये तत्व ज्ञान क्या है? ये राग का प्रकार है। देखो आगे पढ़ते हैं, कहां से पढ़ रहे थे भैया? वो बनारसी दास का तो क्या ना, ये लोक अरुपर लेख से मेरा ना कुछ संबंध है और भिन्न पर से यह एक चिल्लोक ही मम लोक है। ये चिल्लोक क्या है? देखो मैं नहीं लिख रहा हूं, ऊपर संस्कृत में है मूल चिल्लोक शब्द। इस लोक की दूसरी पंक्ति में पहला शब्द है चिल्लोक, सुना कभी? है ना राजन जी, चिल्लोक ही, ये चैतन्य लोक ही मेरा लोक है। मैंने बारहवीं बारह भावना में लिखा है जिस मैं झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है ना। लोक भावना में पढ़ना क्या कौन है, लोक क्या है? जिसमें छह द्रव्य एक साथ झलकें ऐसे भगवान आत्मा को लोक कहते हैं। और ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, राजवार्तिक में है, यस्मिन सद्द्रव्याणि लोक्यन्ते लोक्यन्ते सह लोका, राजवार्तिक में है। एक एक शब्द आगम आगम में से है, कहां कहां से लिया है, कहां कहां से वो दिमाग में घुसा है। और इसमें ही लिखाना चिल्लोक, तो कौन सा है, चिल्लोक की परिभाषा क्या है? मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जिसमें लोकालोक स्वपर प्रकाशक है वो भगवान आत्मा मेरा लोक है। अब उसका वियोग का मुझे कोई डर ही नहीं है। दस प्रकार के परिग्रह को मैं अपना लोक मानूं तो मुझे उसके वियोग का डर है। कि तुम कहां जाओगे? कि मैं तो अपने आत्मा में जाऊंगा, मैं नरक और सुरक जाने ही वाला नहीं हूं। क्यों? अदन स्वर्ग वास ही नीको नाही बिन समकित के बीरा, और नरक वास भी नीको है यदि समकित सहत हो बासा। कहां है उस अपने अपने कहां है कि मुझे नरक का भय और स्वर्ग का लोभ कहां है? नरक के दुख तो तुमने बहुत सुने हैं, कहते हुए संजीव ने स्वर्ग के सुख दुख बताओ ना, स्वर्ग के दुख कितने हैं? ये जो ऐरावत हाथी है ना, जो तुम्हारा आता है ऐरावत हाथी, ये त्रिंज गति का नहीं है, ये देवगति का जीव है। और इसे हर समय ऐसे ही हाथी घोड़ा बनना पड़ता है जब जो कहो, और उससे उसे कितनी तकलीफ होती है। उसका बस चले तो फेंक दे रहे इंद्र को भी, अपने ऊपर बैठने दे रहे। क्यों? अभी हम अपन लोगों में से यहां कोई कहो कि साहब आप यहां वैसे घोड़ा बन जाओ, और जैसे बच्चे को बन जाते ना, हम तुम्हारी पीठ पे बैठते हैं, बच्चे बैठ जाते हैं अपने दादाजी की पीठ पे और दादाजी लेके चलते हैं, हाँ घोड़ा घोड़ा, वो बच्चा कहता है ऐसा तुम बनो हम बैठते हैं, ऐसा करो क्या बोलते हो, कोई तैयार है घोड़ा बनने को? और मर गया अभियोग जाति के देव हो गए तो सागरों पर्यंत घोड़ा बनना पड़ेगा। और अपनी बिल्कुल सेवा भावी अत्यंत अनुकूल, जिसका अपन एक मिनट को भी वियोग नहीं चाहते हैं, ऐसी पत्नी का स्वर्ग वास हो जाए तो कितना दुख हो सकता है। वो दुख की इकाई बांधो, मन एक किलो दुख होगा, समझ लो, दुख किलो से नहीं नापा जा सकता, लेकिन मान लो कि ऐसी अपनी बिल्कुल असर्वानुकूल पत्नी जो झगड़ती है लड़ती है, वो उसकी छोड़ दो, 24 घंटा सेवा में हाजिर रहती है, वो एक पत्नी का वियोग हो जाए तो हमें कितना दुख होगा, एक किलो, ठीक है। तो वो तो हमें जिंदगी में कदाचित एक दफे भोगना पड़ेगा, यदि हमारी आयु कुछ ज्यादा हुई और पत्नी की कम हुई तो बस, हो सकता बच भी जाए उससे, हम चले जाए पहले, हो सकता क्या नहीं, हो सकता, बोलिए अब उनको इस मनुष्यभम में। अब उस सौधर्म इंद्र को जिसको तुम महासुखी मान रहे हो, इससे भी ज्यादा अनुकूल पत्नी क्यों, कक्का वियोग का दुख कितनी बार उठाना पड़ता है एक जिंदगी में, बोलो पदम जी, 40 नील, ये नील क्या होता है, हमारी समझ में नहीं आता नील क्या होता है, सुनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, और नील आप समझ में आई ना, वो नील, और कितने नील, 40 नील, उसकी पत्नियां मर जाती हैं उसकी एक जिंदगी में, इतना पत्नियों के वियोग का दुख उसे भोगना पड़ता है, और आप एक आओ तो फटाफट दूसरी आ जाती है। तो ये मैं पूछता हूं, फिर वो तुम्हारा पत्नी के प्रति प्रेम कहलाया कि उसकी पूर्ति हो जाए तो तुम बस मस्त क्यों, जिस पत्नी को ये पता चले कि ये पति मेरा एक दिन भी नहीं रुकेगा और दूसरे दिन शादी करेगा मेरे मरने के बाद, उसे मैं तुमसे कितना प्रेम रहेगा क्यों, जैसे तो मेरे के इंतजार में ही है, मेरे तो मरने का इंतजार कर रहा है क्यों, आप सोचो। अब वो कहता है वो बन गई भूत, कौन, पहली पत्नी, और दूसरे फटाफट महीना भर के भीतर शादी कर ली दूसरी, तो पत्नी आई किसी के माथे में और कहा तुमको एक महीना भी चैन नहीं पड़ी, तुम मुझे क्या समझते हो, कि भाई तुझसे इतना प्रेम करता था कि तेरा वियोग में एक महीने भी बर्दाश्त नहीं कर सका, ते प्रेम का प्रतीक है अप्रेम का क्यों, बोलो, अब समझना, और ऐसे कितने कितने दुख हैं देवगति में, ऐसे ऐसे कितने कितने दुख हैं, आप समझना ही ना, अब एक दुख, अब दूसरा और बताऊं, मोक्ष में किसे पहले जाना है, वे चक्रवर्ती ये पट्टरानियों की मुख्य सचियों की अभी दुनिया तो बहुत होती है, उनकी बात नहीं है, तो वे सब पुरुष बन के और मोक्ष चली जाती हैं, कितनी, 40 नील, और ये यहीं बैठे रहते हैं, झाड़ू लगाते रहते हैं, है ना, रत्नों की वर्षा करते हैं, कहीं ये करते हैं, कहीं वो करते हैं, कि दरवाजे पे आगे नाचते हैं तीर्थंकरों के, ये सब क्या है, ये यहीं नाचते रहते हैं और वे मोक्ष चली जाती हैं, बोलो, अवसोधर्म बनना के सची वे कहते हैं मेरा तो चैतन्य लोक है, ना मुझे स्वर्ग लोक चाहिए ना मुझे नरक लोक चाहिए, ये जगत का लोक से मेरा कोई संबंध ही नहीं है, ये लोक अर पर लोक से मेरा न कुछ,
अरे भिन्न प्रत्येक यह चिल्लोक ही मम लोक है, जब जानते यह ज्ञानी जन तब होए क्यों भयभीत वे, मैं तो सतत निशंक हो निज ज्ञान का अनुभव करे,
जब ज्ञानी जन ये जानते हैं तो फिर काय को भयभीत हो? अरे जिन संयोगों को बदलना है तो बदल जाए ना। ये संयोगों को जिनको बदलना है वे बदल जाएंगे। क्यों साहब, हम आपका प्रवचन नहीं सुनेंगे? मत सुनने ना, हम तुम्हें कभी बुलाएंगे नहीं, तुम मत बुलाएंगे ना। क्यों तुम्हें भाई, हमें बुलाने वाले बहुत है। अरे इसकी क्या जरूरत है, नहीं बुलाएंगे तो शांति से घर में रहेंगे ना। क्यों, ये संयोग तो बिखरने ही वाला है। 2 साल पहले बिखरा गया, 2 साल बाद बिखरा, क्या फर्क पड़ता है? चलो सोचो गंभीरता से। ये कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तत्व ज्ञान की बात कर रहा हूँ, ये सच्ची बात कर रहा हूँ। शांति सुख शांति का उपाय एकमात्र यही है। इन संयोगों के पीछे ये संयोग बिखरना जहाँ ये संयोग, अरे ये संयोग तो बिखरने के लिए ही बने हैं। इनमें एक्सपायरी डेट उसके साथ में लिखी आती है। जो दवाई बनती है उस दवाई पे उसी दिन एक्सपायरी डेट लिखी आती है। तो अपन जब दिमाग के पेट में आए थे ना, उसके पहले अपने पे एक्सपायरी डेट लिखी थी। और तुम पढ़ पाओ चाहे नहीं पढ़ पाओ, ज्योतिषी लोग पढ़ लेते हैं ना, जैसे हाथ में पढ़ते हैं, तो हाथ में लिखी है ना, चेहरे से पढ़ते हैं, चेहरे में लिखी है। कुछ लोग हमारी चाल से पढ़ लेते हैं। क्यों, तो चले गए हमारे कमिश्नर साहब आए थे, तो 2-4 10 उदाहरण ऐसे बताते थे कि फलाने ज्योतिषी ने ये बता दिया था, बिल्कुल ऐसा ही निकला, बिल्कुल ऐसा ही निकला, बिल्कुल ऐसा ही निकला है। जो एक बताते हैं हमारे अशोक भाई है ना सिंगापुर वाले, कि एक ऐसा वैद्य है गुजरात में कहीं कि आप ऐसे चल रहे हो बाबू भाई, और तुम्हें पीछे से देखे तो तुम्हें क्या बीमारी है बता देता है। आपको पता है ऐसे वैद्य का? क्यों अमृत भाई, वो अशोक भाई बताते थे, और कभी कभी उसके पास जाते भी थे, गुजरात में है कहीं। तो मैं एक ही बात कहता हूं कि साहब आपको आपका क्या है कहना, शक्ति बिल्कुल 100% शक्ति होगी। क्यों, मेरा तो ये सिद्ध होता है कि भविष्य जाना जा सकता है, इसका मतलब भविष्य नक्की है। मेरे से क्रमत बजाय सिद्ध हो गई, मैं क्यों मना करूंगा? क्यों, मेरे लिए तो उदाहरण है बढ़िया। तुमने जान लिया और तुमने मान लिया कि कोई जान सकता है, तो कोई आदमी 10 साल की जान सकता है तो कोई आदमी मेरे पास, मेरे घर मेरे पास तो नहीं, मेरी पत्नी के पास यहां एक आदमी आया, वो मेरी कुंडली मांगता था, उसे देखना है, ये देखना होगा कि मैं कम बनने वाला कि ये देखना होगा कि मेरे से क्या होने वाला है, है? क्यों ई लोग और पहलोक में मेरी क्या दुर्दशा होने वाली है, सुदशा जो भी उसकी भावना हो, लेकिन मेरे पास नहीं है, नहीं तो कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो फिर उन्होंने याद आया तो बताया कि वो अभिनंदन ग्रंथ है ना, उसमें शायद कोई काल ऐसा लेख है, उसमें जाके देख लेना तुम। अब वो ले गया होगा, नहीं 2-4 दिन पहले ही, क्योंकि उसको क्या जरूरत है, तुम अपना देखना। क्यों भाई, हम तो चाहे लाखों वर्षों तक जीवूं और चाहे मृत्यु आज ही आ जाए, हम तो रोजाना ऐसी भावना भाते हैं, आज आए तो हम आज मरने को तैयार हैं, वो आज आएगा तो ये नहीं कहेंगे कल आना, कि फिर कुछ तो कह दो ना सबसे, जो कुछ कहना है रोजाना कहते हैं ना अपने बाल बच्चों से, अरे साल में 10 दफे कहते हैं कि तुम्हारा एक यही काम आएगा, चाहे जितना पैसा परिग्रह जोड़ लेना, वो कुछ तुम्हें सुख शांति देने वाला नहीं है। 1 दफे नहीं 50 दफे कहते हैं, अकेले में प्रवचन में भी कहते हैं कि इसमें रहोगे बेटा, इसे समझोगे तो यही सुख शांति का मार्ग है, कोई दूसरा नहीं। जो सबसे कहते हैं वो उनसे कहते हैं, और हमें कोई विकल्प नहीं है। अमेरिका में हमारी ऐसी पोजीशन हो गई थी तो हमसे तो कोई क्या कहता, हमें तो, लेकिन पत्नी से कहा कि खबर कर दो बच्चों को, इसको बुला लो उसको बुला लो, डॉक्टरों ने कह दिया, मैं किसी को नहीं बुलाना, मैं हूं ना, लिख के ले, मैं लिख के देती हूं ना, क्या लिखवाना है तुम्हारे लिए, मैं बहुत, हम हम सब तैयार हैं, हम दोनों तैयार हैं, मरने को, जीने को, अकेले जीने को, साथ साथ जीने को। सचमुच एक दिन की भी तमन्ना नहीं है कि अब जिये इस लोक का जो स्वरूप देखा है, और 100 वर्ष तक जिये तो उससे अत्यंत अरुचि भी नहीं है। क्या देखो क्या लिखा है इसमें, जब जानते यह ज्ञानी जन तब होए क्यों भयभीत बे, कहीं मेरा कुछ है ही नहीं, ये वियोग जाने वाले जावे ना, वे तो सतत देखो निरंतर निशंक हो निज ज्ञान का अनुभव करें कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं और मैं उसका अनुभव करें। ये पंक्ति 6 दफे आएगी, देखो देखो पंक्ति में हर एक में आएगी, देखो कौन सी, वे तो सतत निशंक हो निज ज्ञान का अनुभव करें, क्यों आएगी साहब, ये रिपीटिशन नहीं है, मैं क्या करूं, अमित से कहो उनकी में देख लो, निशंका सततम स्वयं च सहजम ज्ञानम सदा बिंदती, उनकी भी 6 दफे आई है, उनने भी 6 दफे लिखी है शैलेश भाई कि मैं तो उसका वेदन करता हूं कि मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं, कि मेरा ज्ञान स्वभाव मेरा जहां जाने वाला है मैं वहां जाऊंगा। जब 1967 में लड़ाई हुई थी ना हिंदुस्तान पाकिस्तान की, वो लाल बहादुर शास्त्री वाली, तब मैं उस साल सिर्फ वो मैनपुरी मेरे परिश्रम था, तो मैनपुरी में अशोक नगर से रवाना हुआ तो मैंने कहा ग्वालियर तक अपन चले जाएं बस से और फिर आगे वहां जाएंगे उसे चले जाएंगे, तो बस से चला दोगे ये शिवपुरी रस्ते में आएगी, और शिवपुरी में डाकुओं का बहुत भय था, कहता वो डाकू पकड़ देते हैं और ये कर लेते हैं और आप ऐसा मत करो, आप उधर से चले जाओ रेल से, लेकिन रेल से टिकट मगर मिलेगा नहीं, बिना पे बदलनी पड़ेगी, धक्का खाने पड़ेंगे, उस वक्त ऐसा कुछ होता नहीं था, मैं गया तो लोग बोलो नहीं माने बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा क्या करेंगे कि वे पकड़ ले जाएंगे, तो मैं पकड़ ले जाएंगे तो मैं उन्हें सुनाऊंगा, मेरा क्या करेंगे, मैं उन्हें सुनाऊंगा और क्या होगा, लेकिन फिर मुझको तो आज तक मैं वहां के सेठियों से कहता था कि मैंने तो उन डाकुओं के आज तक हस्ताक्षर भी नहीं देखे, अरे आपके पास चिट्ठियां आती हैं आदर मुझे भी बता दो ना, क्या आई नहीं मेरे पास तो कोई चिट्ठी, क्योंकि वो चिट्ठी जो डाकुओं वाला माल जिसके पास हो उसके पास आएगी ना मेरे बाबू, मुझे तो जिनको प्रवचन सुनना है वही बुलाएंगे कौन है ना, तो ये आएगी कौन सी, वे तो सतत निशंक हो निज ज्ञान का अनुभव करें, ये 2 भय हो गए, अभी चलो तीसरा बोलो भैया, ये कैसे है, बोलो बोलो,
सही कई वही भेद नायत चलम ज्ञान स्वयं भेद्यते निर्भेदोदित वेद्य वेदक वलात् एकम सदा नाकुलै नैवान्यागत भेद नैवैवे तद्वी कुतो ज्ञानिनो निशंका सततम् स्वयं स सहजम् ज्ञानम् सदा विन्दति, चूंकि एक अवेद के भाव हो अतीव ज्ञानी निश्चय निज ज्ञान का अनुभव करें, अनवेदना कोई है नहीं तब हो क्यों भयभीत वे, वे तो सतत निशंक हो निज ज्ञान का अनुभव करे।
देखो वेद वायदक भाव निश्चय से अभेद ही होते हैं, अपने ही भगवान आत्मा वेदक, वेदक है माने अनुभव करने वाला, और वो ही वेद्य है, वो ही अनुभव में आने लायक है। ये विद धातु ज्ञान के अर्थ में होती है, वैसे तो जानने के अर्थ में ही होती है, लेकिन जो जानाति ज्ञा धातु है इनको तो हम जानने के अर्थ में प्रयोग करते हैं, और विद धातु को जानने के साथ भोगना साथ में, इन दो चीजों के मिक्सचर में हम विद धातु का प्रयोग करते हैं, इसीलिए उसे वेदना बोलते हैं, वास्तव में तो वेदना माने जान नहीं है, अनुभूति पूर्वक जानना उसका नाम वेदना है। समझे ना, वेदन माने जानना ही है मुख्य रूप से, तो विद धातु का ज्ञान है ऐसा ही अर्थ लिखा है शास्त्र में, लेकिन उसमें अनुभव साथ में सुना है जुड़ा है। तो वो कहते हैं कि वेद वेदक भाव तो मेरा पर के साथ है ही नहीं, पर के साथ जो वेद वेदक भाव है उसकी बहुत चर्चा की है समय सार में, और उसमें क्या क्या लिखा है कि वेद वेदक भाव कभी मिलते ही नहीं। याद है ना कहाँ आता है, वहां आता है कि वो कहते हैं कि जैसे तेरे मन में कोई भाव आया भोगने का, भोगना माने क्या है आप जानते हैं ना, ज्ञान और सुख, इन दोनों गुणों के मिक्सचर का नाम है भोगना। दुख भोगे था सुख भोगे, यानी भोगना उसे ही बोलते हैं ना, और भोगे माने जाने। तो वो कहते हैं कि ये पर पदार्थों के वेदन की जो तू बात करता है तो वो तो कभी मिल ही नहीं सकते। जब तेरे को भोगने का भाव होता है तब वो भोग पदार्थ सामने नहीं होता, और जब वो पदार्थ सामने आता है तब तक वो भोगने का भाव खत्म हो जाता है। तो इनका मिलान कभी होता ही नहीं, इसलिए ये बिल्कुल निरर्थक है। इस बात को सुनाने के लिए, समझाने के लिए मेरे पिताजी एक बात कहा करते थे, वो उदाहरण मैं आपको बताता हूं। बुढ़ापे में शादी करी उसने, तो लोग क्या करता है, क्या करता है तू, अब क्यों करता है शादी बुढ़ापे में, तेरे घर में चार चार बेटे हैं, चार चार भुए हैं, सब सेवा भाभी हैं, सब तेरा समय पर खाना पीना सब दूर घर में तेरी, पुराने जमाने में क्या करूं, रोटी कौन बनाएगा कौन खाएगा, ऐसी समस्या थी, वो बड़ी समस्या थी। घर में चक्की भी महिलाएं पीसती थी, तो आदमी बेचारा के लिए चक्की भी पीस है, बहुत बड़ी समस्या होती थी। आप तो आज आपको मजाक लगता होगा, वो आदमी अकेला रह जाए तो उसे अपना घर चलाने के लिए घर को लीपना पोतना और कितना कितना काम होता, रोटी बनाना भी कितना महासंग्राम था, क्योंकि वो कंडे से वैसे अग्नि जला के बनानी पड़ती थी, और बरसात में लकड़ी गीली हो जाती थी और उसको जलाने में, सारे मैंने देखे हैं अपने आंख से नरेश जी। अब तुम तो बड़े बड़े शहरों में पैदा हुए हुए हैं, तुम्हें क्या देखो, तुम्हें क्या पता, तुम्हें पापा ने देखे हो तो देखे होंगे, पूछना उनसे कभी। बहुत बड़ी समस्या थी वो। अब जिसके घर में सब परिवार है, बहुएं अच्छी हैं और सब तरह की सुविधा है, फिर तो उसे क्या दिक्कत है, उसमें क्यों कर रहा है सारी, पिताजी सुनाते थे, तो उसने कहा मैं बताता हूं क्यों कर रहा हूं। उसे बुलाया, उसके सामने बहू को बुलाया, बेटा मुझे मूंग की दाल के पकोड़े बड़ी वो खाना है, वो भी जो गलाना बलाना पड़ता, मैं नाम नहीं जानता वो क्या चीज बनती है, वो चीज बताई उसने कि मुझे एक खाना है, कहाँ पापा बन जाएगी। फिर उसने वो उड़द गलाई, दाल गलाई, वो गला करके फिर दूसरे दिन उसे पीसी, फिर और किया, ऐसा जो भी प्रक्रिया करनी थी उसने सब करी, और तीसरे दिन पकौड़े बन के वो आगे खाने। अब बोले देखो आगे ना, अब तेरे को क्या जरूरत है, बोले ये जरूरत है कि यही बात मैंने एक दिन अपनी पत्नी से कही थी, क्या कि मुझे ये खाना है, तो वे उसी दिन बन गए थे दो घंटे बाद। कि कैसे बन जाएंगे वे, वो तो इतना गलानी पड़ती है, ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, इतने साल तो बन कैसे जाएंगे। बोले घर में बड़ी बड़ी पापड़ बड़ी होते ना, बड़ी समझ गया, वो बड़ी रखी थी, वो सब पिटी पिटाई घनी बोने भुनी, तो उन्होंने फटाफट उसको गलाया बना बनू करके, और मेरे को जब खाने की थाली पे गया तो वो चीज बनी बनाई तैयार थी, इसलिए मैं शादी करूंगा। अपन को बहुत हंसी आती है इस बात पर, हंसने जैसी बात भी है कि सिर्फ पकौड़े खाने के लिए शादी करेगा है? लेकिन जिसको भाई साहब जिंदगी खाने के लिए ही मिली है, और जिसको यही सर्वस्व है, यही सुख है, अतीन्द्रिय सुख की जिसको खबर ही नहीं है, जिसको एक एक मिनट ये पांच इंद्री के भोगों में ही सुख दिखता है, वो सारी अनुकूलताएं चाहिए, सारा परिग्रह लुट जाए क्यों। अभी मैं वर्तमान का सुनाना नहीं चाहता हूं, वर्तमान का भी मेरा बिल्कुल ताजा उदाहरण भी मेरे पास है, क्या कि सिर्फ صبح سے جو مجھے کھانا پینا ہے جس کا میں شوقیہ ہوں پرماتم, وہ چیز مل جائے اس لیے بھی لوگ شادی کر سکتے ہیں. 65-70 برس کی عمر میں کی ہے ابھی میرے ابھن متر نے, کیونکہ وہ ویوستھا نہیں بنتی تھی اس کے بنا, جانتا ہے تم. کئی لوگ جانتے ہیں جو میرے بیٹھے دوست ہیں, سمجھ گئے نا, یہ کوئی اسمبھو نہیں ہے اس سنساری جیووں کے لیے, کیونکہ اربوں کی سمپتی کروڑوں کی سمپتی پڑی ہے, اس مفت میں ہی چھوڑ جانا ہے نا, تو اس بھاؤ میں کیا فرق ہے اسے ملے یا کسی کو ملے, یہ سب ایک سے ہے نا, کیا فرق پڑتا ہے اپن کو. لیکن دو روٹیاں پکوڑے مکوڑے تو ملتے رہیں گے انت تک. ان سے ایک کہتے ہیں بھائی یہ سنیوگ جو ہیں یہ کبھی ہوتے ہیں, وہ تیری پتنی نے بنا کے دیے بیوی, 2 گھنٹے لگے نا بیٹے بیٹے کے بھات کا ملان کا ہوگا, وہ صرف دوری کم ہوئی, سمجھنا. ایک ایک چیز پہ تم سوچنا کہ جب آپ کو بھاو ہوتا ہے اس طرح کا تب وہ سنیوگ نہیں ہوتے ہیں, اور جب وہ سنیوگ ہوتے ہیں تب تک آپ کا بھاو غائب ہو جاتا ہے, اور دوسرے وکلپوں میں آپ الجھ جاتے ہیں. اس سنسار میں اس سمے سار میں لکھا ہے, کلش سے مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے, کہ بید بیدک بھاو کبھی ملتے ہی نہیں. کیا اور ملیں گے تو کم ملیں گے, کہ میں ہی بیدک اور میں ہی بید, تو وہ ہمیشہ موجود ہے ادھر, اور وہ بیدک بھاو بھی وہیں موجود ہے. تو جس نے بید بیدک بھاو اپنے آتما میں ہی گھٹت کیا ہے, بھائی پدارتھوں کو بید کے روپ میں رکھا ہی نہیں ہے کہ مجھے ان کا بیدن کرنا ہے, کیا اور اس کو بید بیدنا کا بھے نہیں ہوتا کہ شریر میں ہوگی تو ہوتی رہے گی, ہمیں کیا لینا دینا, ہماری تھوڑی ہے. کہ صاحب ہوتا ہے جب پتہ پڑتا ہے, کیا دیکھو اس میں لکھا میں نہیں کہتا ہوں, چونکہ ایک ابھید میں ہی بید ویدک بھاو ہوں, ایک اکیلے آتما میں ہی وید ویدک بھاو ہوتا ہے, ہم اپنے کو ہی بھوگتے ہیں. یہاں وہ نکال دیا نا, ہاں نکال, لاؤ 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 لاؤ, جو نساجن جی نے نکال دیا, وہ 143 کلش ہے, ارے چلو کوئی 47-43 جی دین نے نکال دیا نا. دیکھو ہم جنہیں چاہیں ارے ان کا بھوگ ہو سکتا نہیں,
کیونکہ پل پل پرلے پاوے بید ویدک بھاو سب, بس اس لیے سب کے پرتی اتی ویرکت رہے سدا, چاہے نہ کچھ بھی جگت میں نج تس وید ویدوان جن.
کتنے کلیئر لکھا ہے نا, دیکھو سنسکرت میں ہے, وید ویدک ویبھاو چلتوات وید تین خلو کانچت میو تین کانچتی نہ کنچن ودوان سروتو پتی ابدرکتی مپیتی, سنسکرت میں لکھا ہے. ان کا ملان کبھی ہوتا ہی نہیں ہے, دیکھا نا, ہم جنہیں چاہیں ارے ان کا بھوگ ہو سکتا نہیں, کیونکہ پل پل پرلے پاویں, کون وید پدارتھ نہیں یہ ویدک بھاو بھی. ہمارے بندرگنج میں کہاوت ہے کہ جب دانت تھے تب چنا نہیں تھے, اور جب چنا ملے تب دانت نہیں ہے, کیا کریں, آج تو نکلی دانت بن جاتے ہیں, کیوں ساری زندگی جب ہم جوان تھے اور ایسی طاقت تھی کہ پتھر کھائیں تو پچ جائے, تب روکھی روٹیوں کی ویوستھا بھی نہیں ہوتی تھی, کیوں ابھی اس زمانے میں بھاگ سے 99% لوگوں کی ایسی استھتی تھی, سب زیرو سے ہیرو بنے, بس تھوڑا تھوڑا پیچھے ہر ایک کو دیکھ لو, کیوں کون کہاں استھتی تھی, کون کہاں کیا کرتا تھا اور کیا پوزیشن تھی, خیال میں آئی نا. انت بھائی ہمیں بتاتے ہیں انہوں نے 300 روپے مہینہ سے نوکری شروع کی تھی, ایک ایک کا سب کا دیکھ لو بھائی صاحب, मैं एक की बात नहीं कहता हूं, सब अपना अपना देखे ना। मैं तो बहुत बड़े आदमी बन गए इसलिए मैंने उनका उदाहरण दे दिया, कोई बुराई के अर्थ में तो दिया नहीं है। हम सबकी यही हालत है ना। तो ये कहते हैं हम जिन्हें चाहें, अब वो जब हमारे पास ऐसी ताकत हो गई कि दिन भर हम घी में डूबे रहें तो डूबे रह सकते हैं। क्यों? तब घी 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 इतना घी नहीं लगा सकते, तो रूखी रोटी खा के जिंदा रहे। क्यों? ये नहीं, शक्कर नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। जब भोग सामग्री है तब भोग नहीं सकते, और जब भोगने की ताकत थी तब भोग सामग्री नहीं थी, क्या करें? बोलो, बढ़िया हम ये पार्टी देंगे, सबको बुलाते हैं, 50 तरह के मिष्ठान, सारी व्यवस्था करते हैं। आजकल तो कितने 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 रुपए थाली में, तुम्हारे बेटे की शादी में कितने रुपए थाली दी थी? हैं? हजारों हजारों में। और हमारे भी पोते की शादी हुई, 1000 रुपए थाली, 800 रुपए थाली। थाली क्या हो रहा है जी? वो थाली में सोना परसेंगे क्या? तो दिन बेटों ने क्या करें, अपन तो दूर खड़े रहे, क्या करें? क्यों? तो ये कौन खा, कौन खा सकता है? पना उनको कौन खा, वही है जिसने सब खाए हों, कुछ नहीं, ऐसी जाता है ना, खत्म। सेठ जी की शान रह गई क्या? कितने की थाली थी, कितने की थाली थी? क्या है जी? वो कहते हैं अभी जब हमें सबकी ऐसी पोजीशन है, मैं कभी कभी कहता हूं बहुत पवित्र भाव से कि ये विचार करो आप अपने हृदय में कि आप ऐसा कौन है आज हम और आप में से कि यदि हम आज से एक नया पैसा नहीं कमाएं तो जिंदगी भर जैसी हमारी जिंदगी है हम वैसी की वैसी जिंदगी बहुत आराम से बिता सकते हैं। एक भी आदमी यहां ऐसा नहीं होगा। फिर मैं कह रहा हूं काय के लिए, फिर काय के लिए ये सब दंड बन? वो परिग्रह संज्ञा है ना जो हमें, वो नहीं छोड़ती है। अपन ने एक आहार संज्ञा ही बता पाई थी, इसने वो चला गया बेचारा। कौन सा, क्या नाम था उसका? वो तो बता दी होंगी ना चारों संज्ञाएं, परिग्रह संज्ञा भी एक संज्ञा है। इसे जोड़े में ना हमें चैन नहीं पड़ती, हम जानते हैं जैसे ही जाने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी ये परिग्रह संज्ञा का परिणाम है। हम गंभीरता से विचार करें और थोड़े इससे विरक्त होकर अपने आत्मा का ध्यान करें, इसी मंगल भावना के साथ में अभी पूरा समाप्त करें।